आवाज के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। सुनो कहानी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और शनिवार, एक और नई कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सुजान सांप और इसके लेखक हैं गिरिजेश राव।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
हमारी मुलाकात पंसारी की एक दुकान पर हुई। जिस जगह मेरा तबादला हुआ था वहां मकानों की भारी कमी थी। हर तरफ महंगाई की मार, टैक्स हॉलिडे होने के कारण अचानक ही जंगल में वनवासियों की जमीनों के दाम आसमान छूने लगे थे और अजीब अजीब से नामों वाली कंपनियां उन पर चार दीवारी बनाकर स्थापित होने लगी थी। अधिकांश में प्रोडक्शन के नाम पर होता कुछ नहीं था। मुंबई से बना बनाया माल आता और वहां असेंबल हो जाता। सरकारी विभागों की संकरी खिड़कियों से तफरीह करके आते हुए चालान पैक सामानों को उन बोगियों तक पहुंचा देते जिन्हें विश्व की सबसे नाकारा रेल पटरियों पर चलते हुए उन्हें पूरे देश में बिखेर देना होता था। केवल 3 घंटे की दूरी पर 3,000 रुपये महीने के फ्लैट में रहने वाले मुझे जब 15,000 महीने की बात सुनने को मिली तो मेरे होश उड़ गए। आम धारणा के विपरीत यहाँ के लोग सीधे साधे हरगिज नहीं थे। उन्हें मजबूरी की नब्ज से खून सोखना बखूबी आता था। मेरे पास बस 7 दिनों का समय था। उसी बीच में अपनी छत ढूंढकर मुफ्त का सरकारी गेस्ट हाउस खाली कर देना था। दलालों से 2 दिनों में ही निराश होकर रोजाना रात को सड़कों पर देर तक घूमने लगा, देखता कि किन फ्लैट्स में लाइट नहीं चल रही है और वहीं गार्ड से जाकर बात करता। गार्ड मेरी समस्या समझते तो बस दांत निपोर देते और कहते, साहब यहाँ तो ऐसे ही है। फिर मैंने दुकानों पर पता लगाना शुरू किया। ऐसे ही एक दिन मैं किसी दुकान पर पूछताछ कर रहा था। दुकानदार मेरे ऊपर अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। उसी समय हमारी बातों में किसी ने पीछे से आवाज की टंगड़ी भिड़ाई, मोटे भाई मेरे साथ बात करोगे? दुकानदार ने राहत की सांस ली। मेरे चेहरे पर कन्फ्यूजन भरी सहमति देखकर उस अजनबी ने मेरा हाथ पकड़ा और पास के छोटे से पार्क में घुस गया। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, नहीं शायद उसने बढ़ा रखी थी। उसकी आंखों से चालाकी टपक रही थी। उसने सिगरेट सुलगाई और शुरू हो गया, मेरा नाम सुजान है, सुजान भाई हर्षद भाई पटेल, गुजराती हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में स्टोर ऑफिसर, 2 बेडरूम के फ्लैट में अकेले रहता हूँ और तुम्हें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मेरी माँ है जो बड़ौदा में रहती है। मांस मच्छी से मुझे परहेज नहीं। हमारी कंपनियाँ बहुत पहले आ गई थी और फ्लैट भी यहाँ के हिसाब से सस्ते में मिल गया, 6,000 रुपये महीना, मेंटेनेंस चार्ज मिला के। एक और आदमी शेयर करने लगे तो मुझे भाड़ा पुसाने लगे, अभी तो हालत खराब है। मुझे मामला अजीब सा लगा। एक अजनबी के पास ऐसा प्रस्ताव एक चालाक मनुष्य ही रख सकता है, ये मानकर मैंने उस पर भरोसा कर लिया। हालांकि ये कोई तर्क नहीं था, मेरे पास उसका प्रस्ताव मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया और तय किया कि परिवार को पुराने स्थान पर ही रहने दूंगा। बेटे का स्कूल फ्लैट के सामने ही था, इसलिए अंजू को अधिक परेशानी नहीं होनी थी। सोचा कि छुट्टियों में आता जाता रहूंगा, प्रोजेक्ट के 18-20 महीने गुजर जाएंगे, फिर तबादला होगा तो देखी जाएगी। मैंने हामी भर दी। उसके चेहरे पर यातना से उबरने के चिन्ह उभरे और लुप्त हो गए। उसने कहा, देखो फ्लैट थोड़े वीराने में है, डरने की बात नहीं, बीसियों परिवार रहते हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। दिन में फ्लैट में ना तो तुम आओगे ना मैं। अगर मैं शहर में हूं तो तुम मेरे साथ ही शाम को फ्लैट में घुसोगे, और छुट्टी के दिन अगर यहां रहोगे तो हम साथ साथ घूमते रहेंगे। देखने के लिए बहुत कुछ है इस शहर में, और मेरे पास स्कूटर है। शर्तें और भी हैं, लेकिन कोई खास नहीं है, धीरे धीरे जान जाओगे। मैं डरा। मकान मालिक की शर्तें तो सुनी थी, लेकिन रूम पार्टनर की शर्तें? मैंने सिर को झटका, कौन इस पागल के साथ छुट्टी के दिन यहां रहेगा? मैं तो अपने परिवार से मिलने चला जाया करूंगा। मैंने उसे अपना परिचय दिया और हम दोनों गेस्ट हाउस से सामान फ्लैट में ले आए। फ्लैट में घुसते ही उसने जीप को तालू पर चटकाकर आवाज निकालना शुरू किया। ऐसा करते और सीटी बजाते हुए वो घूमता रहा और मेरे सामान को यहां वहां करीने से सजाता रहा। उसने फ्लैट को ऐसे व्यवस्थित रखा था जैसे उसमें कोई परिवार रहता हो। ये देखकर, अपने आलस और लापरवाही को सोचकर मैं परेशान हुआ। सोने के पहले उसने कहा, बेडरूम का दरवाजा खुला रखना और 3,000 रुपये अभी मेरे हवाले करो। रुपए पैसे के मामले अगले दिन के लिए नहीं छोड़ने चाहिए। इतने से साथ में ही मैं उसका अभ्यस्त सा हो गया था। मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। रुपए गिन दिए, गुड नाइट बोल दिया। उसने जय श्री कृष्ण कहा। हमारे बेडरूम अलग थे। पहली रात चैन से बीती। बस एक खास बात मेरे ध्यान में आई। रसोई से और रद्दी पेपर रखे स्टोर से रेंगने की आहट सी आती थी और फिर उसकी सीटी की आवाज़। मैंने उसे नई जगह का भ्रम समझा। सुबह उठा तो सुजान भाई ने बैटरी बगल में रख दी थी और पास बैठकर मटर छील रहा था। तुम शादीशुदा हो, तुमसे किचन का काम तो होगा नहीं। जो खाने का मन हो बता दिया करना, मैं बना दूंगा। उस डायरी में हिसाब है, जो कोई सामान लाएगा अपने नाम से लिख देगा, महीने के अंत में आधा आधा। अरे वाह, मुफ्त में कुक भी मिल गया, मुझे तो अपने भाग्य पर नाज हो आया। मैंने उससे बस इतना कहा, सब्जी और दाल में चीनी मत डालना। इस पर वह हंसा और एकाएक चुप होकर सीटी बजाने और चटके की आवाज निकालने लगा। उसने एकदम से पूछा, घरवाली से अलग इतने दिन अकेले रहे हो क्या? मेरे नहीं कहने पर उसने आंख मारी। कुछ चाहिए तो बता देना, मुझे कोई अनुभव नहीं, वैसे साथ वाले बताते हैं। मेरे मुंह में उपकाई भराई। तय किया कि अंजू को इस फ्लैट पर कभी नहीं लाऊंगा, लेकिन प्रत्यक्ष में बोला, सुजान भाई मुझे भी सुजान रहने दो, मुझे इन बातों में दिलचस्पी नहीं। उसकी सीटी की बोलती बंद हो गई और ओंठ सामान्य हो गए। कुछ दिन गुजरे, वो मुझे बहुत मासूम लगने लगा। मैं एकाध छुट्टियों में रुक गया तो उसने बहुत ख्याल किया। स्कूटर से हम दोनों जंगलों में घूमते रहे। किसी वनवासी की झोंपड़ी में जाकर मुर्गा पसंद कर लेते, लौटने पर दावत होती। वो मिर्च अधिक ही डालता। जाने क्यों मुझे चिकन खाने के बाद सी सी करना अच्छा लगने लगा। उसने मुझे सीटी बजाना सिखा दिया और कहा, बजाते रहा करो, झुर्रियां बहुत देर से पड़ती हैं। ये नुस्खा न मैंने पहले सुना था, न ही दोबारा किसी के मुंह से सुना। सीटी बजाना सीखने के अगले ही दिन उसने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मुझे सौंप दी। अब मैं कभी भी फ्लैट में आ जा सकता था। हेडक्वार्टर ने कंप्यूटर भेज दिया इस निर्देश के साथ कि जब तक साइट पर स्थिति ठीक ना हो घर पर रहो और हर सप्ताह प्रोग्रेस डेटा फ्लॉपी में भेज दिया करो। ये पहला अवसर था जब मैं फ्लैट में अकेले दिन में घुसा। गाड़ी वाला दरवाजे तक पैकिंग रखकर चला गया। मैंने सीटी बजाते हुए फ्लैट का दरवाजा खोला और सामने मोजाइक के फर्श पर नागराज को विराजमान पाया। खिड़रिचिया गेहूं सांप फन काढ़े अपनी पूरी गरिमा के साथ मुझे घूरे जा रहा था। सीटी सटक गई। पहली रात की रेंगने की आहट याद आई, सुजान भाई की सीटी याद आई और ये पाठ याद आया कि सांप बहरा होता है। अब सुजान भाई मासूम के बजाय जल्लाद लगने लगा था, जो कि इस सांप के लिए शायद मेरा शिकार तैयार कर रहा था। मुझे लगा, हो ना हो ये सांप फ्लैट में हमेशा रहता है या आता जाता रहता है। ये भी ध्यान में आया कि सुजान भाई ने किचन संभाल रखा था। क्या ये सांप किचन में रहता है और रात में घूमता है? मैं पसीना पसीना हो गया। शायद मेरी चेतना कुछ देर के लिए कुंद हो गई थी, क्योंकि सांप कब गायब हो गया मुझे पता ही न चला। डरते डरते मैंने कंप्यूटर के डब्बे फ्लैट में रखे, ताला लगाया और सुजान भाई की फैक्ट्री के लिए ऑटो पकड़ लिया। सुजान भाई ने पूरा हाल ऐसे सुना जैसे सुहाने दिनों में लोग रेडियो पर मौसम की सूचनाएं सुनी अनसुनी करते हैं। वह मुस्कराया और बोला, मैंने तुम्हें बताया नहीं, वरना तुम कभी राजी नहीं होते। अरे डरने की जरूरत नहीं है, वो सांप मेरा दोस्त है और दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस सीटी बजाते रहना। स्तब्ध मन से मैंने मन ही मन उसे वे सारी त्रिविमीय गालियां दे डाली जो कि कॉलेज रैगिंग में सीखी थी। उनका वह पहला मौन प्रयोग था। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता है सांप हवा में होकर आती आवाज नहीं सुन सकता, बहरा होता है। उसने कहा, अरे वे नादान हैं जो ऐसा कहते हैं कि सांप बहरा होता है। सांप कुछ भी कर सकता है, मेरी बात पर भरोसा रखो, तुम्हें सांप से डरने की जरूरत नहीं है। अंधविश्वासी हो तुम, बीवी बच्चे तो हैं नहीं तुम्हारे, तुम्हें अपनी जान की क्या परवाह, एकदम सनकी हो। लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सुजान भाई, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मुझे आज ही फ्लैट खाली करना पड़ेगा। कर दो खाली, फुटपाथ पे रहोगे क्या? वो थोड़ी देर रुका और बोला, मैंने कब कहा कि मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं? थे, छोड़ गए सब मुझे। इसी फ्लैट में हम लोग साथ साथ रहते थे। उस अहमक औरत पर पता नहीं कौन सा फितूर सवार था, हमेशा लड़ती थी। एक दिन दोनों बच्चों को लेकर जाने कहाँ गायब हो गई। सांप तो उनके जाने के बाद आया, किचन में घरवाली नहीं सांप रहता है। इस इकलौते के माँ बाप को गुजरे, जमाना बीत गया, और फ्लैट किराए का नहीं है, मेरा अपना है। तुम भी छोड़कर चले जाओगे? सुजान भाई फूट फूट कर रो पड़ा। स्तब्ध सा मैं बस उसका सिर सहलाता रहा। उस क्षण कुछ घटित हुआ और मैंने तय किया कि फ्लैट खाली नहीं करूंगा। सतर्क रहकर जिया जा सकता था, आखिर सुजान भाई इतने दिन से रह ही रहा था। साइड पर भी सांप होंगे, अनहोनी तो कहीं भी हो सकती है। सुजान भाई ने ना तो दोबारा कभी किराया मांगा और ना मैंने दिया। सुजान भाई के साथ 20 महीने रहने के बाद वो दिन भी आया जब मुझे मेरे अपने प्रदेश में टर्मिनल बनाने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। पहले मुंबई में रिपोर्ट करना था। मुझे ट्रेन पर चढ़ाते हुए सुजान भाई बस रोता रहा। ट्रेन सरकने लगी तो उसने मेरे हाथ में लिफाफा पकड़ा दिया। लिफाफे पर 1 रुपए का सिक्का चिपका था, अंदर 3,000 रुपए थे। उसने कहा, मोटे भाई रख लो, जय श्री कृष्ण। मुंबई में 7-8 दिन रहने के बाद एक फाइनल बिल में समस्या होने के कारण उसे सुलझाने मुझे वापस जाना पड़ा। वो दिन छुट्टी का था और मैंने सोचा सुजान भाई से मिलता चलूं। अपार्टमेंट के गार्ड ने बताया, साहब सुजान भाई ने तो खुदकुशी कर ली, बड़ी खराब मौत रही होगी, पूरी देह नीली पड़ गई थी। मेरे हाथ से ब्रीफकेस गिर पड़ा और मैं चिल्लाया, आत्महत्या नहीं, उसे सांप ने काटा होगा। नहीं साहब, जहर की शीशी बगल में पड़ी थी, और आपको सांप की बात कैसे पता? बस ऐसे ही, क्यों क्या हुआ? साहब एक सांप पंखे से लटका मरा पाया गया। सांप पंखे तक कैसे पहुंचा? सोचते हुए मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। आज लिखते हुए सुजान भाई की बात याद आ रही है। वे नादान हैं जो ऐसा कहते हैं कि सांप बहरा होता है, सांप कुछ भी कर सकता है। अब मुझे सांपों से डर नहीं लगता। धन्यवाद।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।